प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें। मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
परमेश्वर ने हमसे किया यूं प्यार और चाहा कि पापों से ले उबार। परमेश्वर ने हमसे किया यूं प्यार और चाहा कि पापों से ले उबार। प्रायश्चित स्वरूप अपना पुत्र दिया कि विश्वासी उसमें पाए क्षमा का उपहार। ज्योति आई है जग में कर्ण दूर अंधकार, पर उसे यहां नहीं किया गया स्वीकार। परमेश्वर को जानते हुए बिना महिमा उनको दी, अंधकार से जोड़ा
आई। श्रोता, इसी सुंदर गीत के साथ ही हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करते हैं, किंतु इससे पूर्व के कार्यक्रम को आरंभ करें अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए। प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगे। हम प्रार्थना करें। हे अति दयालु और प्रेमी पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं इन मधुर और पवित्र क्षणों के लिए जो आपने हमारे जीवन में हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके जीवित और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमारी सहायता करने की कृपा करें, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें और अपने वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें, विश्वास लाने में हमारी सहायता करें, ताकि ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम हमारे लिए आत्मिक आशीष का कारण बन सके। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है या किसी संकट क्लेश परेशानी में है या किसी बुराई में फंसा हुआ है, समाज के लिए, परिवार के लिए समस्या का कारण है, प्रभु आप उस पर अनुग्रह करें और उसका छुटकारा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम पुराने नियम से शमूएल नबी की दूसरी पुस्तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 16वें और 17वें अध्यायों को देखेंगे। आज हमारा विषय होगा अबशालोम दाऊद के विरुद्ध विद्रोह करता है और दाऊद और अबशालोम में गृह युद्ध छिड़ जाता है। मित्रवर, दाऊद ने ये अनुभव कर लिया है कि उसके भयानक पाप के पश्चात उसका जीवन संकट और क्लेशों में घिरता गया। 15वें अध्याय में हमने देखा कि अबशालोम बागी होकर अपने पिता दाऊद के विरुद्ध विद्रोह करता है। 16वें अध्याय में हम अनेक घटनाओं के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम शाऊल के सेवक सीबा की चतुराई व धोखेबाजी के विषय में पढ़ेंगे। स्वाइये हमारे साथ देखिए दूसरा शमूएल उसका 16वां अध्याय 1-4 पद। इन पदों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरा शमूएल 16 अध्याय 1-4। अभी दाऊद चोटी से थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि देखो, मपीबोशेत का सेवक सीबा उसे मिला। वह 2 गधे लिए हुए था जिन पर जीन कसे था, तथा 200 रोटियां किशमिश के, 100 गुच्छे, 100 ग्रीष्मकालीन फल और 1 मश्क मदिरा लदी थी। राजा ने सीबा से कहा, तू इन्हें क्यों लाया? तब सीबा ने उत्तर दिया, ये गधे तो राजा के घराने की सवारी के लिए हैं और रोटियां तथा ग्रीष्मकालीन फल जवानों के भोजन के लिए हैं और मदिरा पीने के लिए है जो जंगल में थक जाएं। इस पर राजा ने कहा, और तेरे स्वामी का पुत्र कहाँ है? तब सीबा ने राजा को उत्तर दिया, देख, वह यरूशलेम में ठहरा है, क्योंकि उसने कहा, आज इसराइल का घराना मेरे पिता का राज्य मुझे लौटा देगा। अतः राजा ने सीबा से कहा, देख, मपीबोशेत की संपूर्ण संपत्ति अब तेरी हो गई। सीबा ने कहा, मैं दंडवत करता हूं, हे मेरे स्वामी, हे राजा, तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। प्रिय मित्र, हम अपने अध्ययन में जब 19वें अध्याय में पहुंचेंगे, तब हमें ज्ञात होगा कि सीबा ने झूठ बोलकर धोखे से मपीबोशेत की संपूर्ण संपत्ति अपने अधिकार में ले ली। उसने राजा की चापलूसी की और स्वामी के पुत्र के विषय में पूछे जाने पर उसने राजा से झूठ बोला और उसने कहा कि आज इसराइल का घराना मेरे पिता का राज्य मुझे लौटा देगा। इस विचार से मपीबोशेत यरूशलेम में ठहरा हुआ है, किंतु ये बात झूठ है, हम आगे चलकर देखेंगे। तब हमारा अगला विषय है शाऊल के संबंधी शिमी द्वारा दाऊद को शाप दिया जाना। तब राजा दाऊद बहुरीम पहुंचा तो देखो, शाऊल के वंश के घराने का एक व्यक्ति वहां आया, उसका नाम शिमी था, जो गेरा का पुत्र था। वह लगातार शाप देते हुए आया। उसने दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंके, जबकि सब लोग और सब पराक्रमी पुरुष उसके दाहिनी तथा बाईं ओर थे। और शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, हट हट, हे खूनी, हे ओछे, जिस शाऊल के स्थान पर तूने राज्य किया, उसके घराने के सारे खून का बदला यहोवा ने तुझ ही से लिया है, और यहोवा ने राज्य तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ में दे दिया है। अब देख, तू अपनी ही बुराई में फंस गया, क्योंकि तू खूनी है। और इस प्रकार से इन शब्दों में वह राजा को शाप देता है और उसे खूनी और ओछा कहकर पुकारता है। तब सरूए के पुत्र अभिषे ने राजा से कहा, यह मरा कुत्ता मेरे स्वामी राजा को शाप क्यों दे, मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। हम जानते हैं कि राजा अपने पराक्रमी पुरुषों से दाहिनी और बाईं ओर घिरा हुआ है, फिर भी वे बिना राजा की अनुमति के कुछ नहीं करेंगे। वे विश्वास योग्य और आज्ञाकारी सेवक हैं, किंतु सरुहा के पुत्र अभिषेक को क्रोध आता है। अब वो राजा से अनुमति चाहता है कि वो जाकर उसका सिर काट दे, परंतु राजा ने कहा, हे सरुहा के पुत्रों, मुझे तुमसे क्या काम। वह जो कोसता है यदि यहोवा ने उससे कहा है दाऊद को शाप दे, तो कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया है। दाऊद उससे कहता है कि यदि यहोवा की ऐसी इच्छा है कि वह मुझे शाप दे, तो फिर हमें उससे प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। 11वें पद में दाऊद कहता है, अभिषे तथा अपने सब कर्मचारियों से उसने कहा, देखो मेरा पुत्र जो मुझ ही से उत्पन्न हुआ मेरे प्राण का खोजी है, तब ये बिन्यामीनी इससे अधिक क्यों ना करे, उसे रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। मेरे मित्र, इन शब्दों से प्रतीत होता है कि दाऊद बहुत टूट चुका है। वो अपने पुत्र के विद्रोह के कारण दुखी है और इसलिए उसे दूसरों के दुख या दूसरों के द्वारा जो उसे दुख पहुंच रहे हैं वे कम लग रहे हैं, उसकी अपेक्षा कम है। कदाचित यहोवा मेरी विपत्ति पर ध्यान दे, तब दाऊद उनसे कहता है कि उसे शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। हो सकता है कि यहोवा मेरी विपत्ति पर ध्यान दे और जो शाप इसने आज मुझे दिया है उसके बदले में मेरी भलाई करे। अतः दाऊद और उसके लोग मार्ग से आगे बढ़ते गए और शिमी भी पहाड़ी के किनारे किनारे दाऊद की बराबरी पर चलता गया और चलते चलते शाप देता और पत्थर और धूल फेंकता गया। किंतु राजा अपने ठिकाने पर पहुंच गया और उसने वहां जाकर विश्राम किया। मेरे मित्र, दाऊद ने इस बात को समझ लिया है कि शाप का कारण भी मेरा पाप है, इसलिए वो कहता है कि यदि यहोवा ने उससे कहा है दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है। दाऊद अब यरूशलेम से बाहर है और अबशालोम यरूशलेम में प्रवेश करता है। 15वें पद को देखें, अबशालोम ने अपने सब लोगों अर्थात इसराइल के सब पुरुषों सहित यरूशलेम में प्रवेश किया, अहीतोपेल भी उसके साथ था। जब दाऊद का मित्र एरेकी हूशे अबशालोम के पास आया, तब ऐसा हुआ कि हूशे ने अबशालोम से कहा, राजा चिरंजीव रहे। तब अबशालोम ने हूशे से कहा, क्या मित्र के प्रति तेरी यही निष्ठा है, तू अपने मित्र के साथ क्यों नहीं गया। अबशालोम हूशे से पूछता है कि तू दाऊद के साथ क्यों नहीं गया, वो तो तेरा घनिष्ठ मित्र है, परम मित्र है। इस पर हूशे ने अबशालोम को उत्तर दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि जिसको यहोवा ने इन लोगों ने और इसराइल के सब पुरुषों ने चुन लिया है, मैं भी उसी का होऊंगा और उसी के साथ रहूंगा। और मैं और किसकी सेवा करूं, क्या मैं उसके पुत्र के समान रहकर उसकी सेवा ना करूं। जिस प्रकार मैंने तेरे पिता के सामने रहकर उसकी सेवा की है, उसी प्रकार मैं तेरे सामने भी रहूंगा। और इस प्रकार से जब अबशालोम हूशे को देखकर आश्चर्यचकित है कि उसके पिता का विश्वास योग्य सलाहकार मित्र उसे छोड़कर मेरे पास कैसे आ गया, तो हूशे ने बड़ा संतोषजनक उसको उत्तर दिया है और अबशालोम उसके उत्तर से संतुष्ट है। तब हम अग्रिम पदों में अहीतोपेल की सलाह के विषय में पढ़ते हैं। 20वें पद से लिखा है, तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, अपनी सलाह दे, हम क्या करें। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, जिन रखेलों को तेरा पिता भवन की देखभाल करने के लिए छोड़ गया है, उनके पास तू जा। तब संपूर्ण इसराइल सुनेगा कि तूने अपने पिता की घृणा को भड़काया है, इससे जितने लोग तेरे साथ हैं उन सबके हाथ भी सुदृढ़ होंगे। अतः छत पर अबशालोम के लिए एक तंबू ताना गया और अबशालोम संपूर्ण इसराइल के देखते अपने पिता की रखेलों के पास गया। उन दिनों अहीतोपेल की सलाह ऐसी होती थी मानो किसी ने परमेश्वर का ही वचन पूछ लिया हो। अहितोपेल की सलाह तो दाऊद और अबशालोम दोनों के लिए ऐसी ही समझी जाती थी। मित्रवर, ये अहितोपेल नामक व्यक्ति दाऊद का अति प्रतिष्ठित और घनिष्ठ मित्रों में था और सलाहकार था, और उसकी सलाह का बड़ा महत्व था। उसकी सलाह को परमेश्वर की आज्ञा समझा जाता था और उसे पूर्ण किया जाता था। उसने अबशालोम को सलाह दी कि वह समस्त इसराइल के देखते अपने पिता की रखैलों के पास जाए। मेरे मित्र, ये कार्य भी 12वें अध्याय के 11 और 12वें पद के दंड के अनुसार हो रहा है, जहां परमेश्वर ने दाऊद के लिए दंड की घोषणा की है। उस दंड में ये भी सम्मिलित है, दाऊद मरा तो नहीं, किंतु जैसा उसने बोया वह वैसा ही काट रहा है। आज भी परमेश्वर का हमारे प्रति यही नियम है। और इन्हीं शब्दों के साथ 16वें अध्याय को हम समाप्त करते हैं और 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रिय मित्र, अबशालोम अपने पिता के विरुद्ध खड़ा होकर खतरनाक खेल खेल रहा है, क्योंकि दाऊद एक निपुण अनुभवी राजा है और अबशालोम तो एक नौसिखिया युवक है। किंतु त्रासदी यह है कि दाऊद उससे प्रेम करता है और चाहता है कि वह ना मरे, बच जाए। मित्रवर, दाऊद वास्तव में एक महान व्यक्ति था, किंतु वह एक भयानक पाप में गिर गया। और इसके अतिरिक्त यदि आप दाऊद पर दृष्टि डालें तो वास्तव में आप दाऊद में एक अद्भुत व्यक्ति पाएंगे। मित्र, क्या मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूं, क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट की है जिसके जीवन में कोई गिरावट ना आई हो? हम सब कहीं ना कहीं गिरते हैं, परंतु धन्यवाद हो उस परमेश्वर पिता का जो हमें इस पतन के कारण फेंक नहीं देता, हमें त्याग नहीं देता, वरन हमें पश्चाताप का अवसर देता है और हमें स्वीकार करता है। 17वें अध्याय में हम दाऊद और अबशालोम के मध्य गृह युद्ध के विषय में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि जब अबशालोम हूशे सलाहकार की सलाह मान लेता है और अहितोपेल की सलाह की उपेक्षा करता है, तो अहितोपेल क्रुद्ध होकर आत्महत्या कर लेता है। स्वाइये हमारे साथ दूसरा शामुएल उसका 17वां अध्याय 1-4 पदों को देखे। यह इस प्रकार से वर्णन है, फिर अहितोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष चुनने दे कि मैं जाकर आज ही रात दाऊद का पीछा करूं। जब वह थका मांदा होगा उसी समय मैं उस पर टूट पड़ूंगा और ऐसा आतंकित कर दूंगा कि उसके साथ के सब लोग भाग निकलेंगे। तब मैं राजा को अकेला पाकर मार डालूंगा और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा ले आऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा मिल जाएगी, तब सब लोग शांति से रहेंगे। ये बात अबशालोम और इसराइल के सब पुरनियों को बहुत अच्छी लगी। मेरे मित्र, ये दशा है इस पुत्र की और इसराइल के पुरनियों की कि वह दाऊद राजा को समाप्त करके प्रसन्न होना चाहते हैं। अहितोपेल दाऊद को नाश करने की सलाह देता है। निसंदेह यदि अबशालोम उसकी सलाह को मान लेता तो दाऊद निश्चित रूप से नाश हो जाता, किंतु हम देखेंगे कि ये अहितोपेल स्वयं ही नाश हो जाएगा। अबशालोम अब एरेकी हूशे से भी सलाह मांगता है, तो आइए हूशे की सलाह के विषय में पढ़ें। फिर अबशालोम ने कहा, अब एरेकी हूशे को भी बुलाओ, देखें उसे क्या कहना है। जब हूशे अबशालोम के पास आ गया तब अबशालोम ने उससे कहा, अहितोपेल ने ये बात कही है, क्या हम उसकी बात माने? यदि नहीं तो तू ही बता। अतः हूशे ने अबशालोम से कहा, अहितोपेल ने इस बार जो सलाह दी है वह अच्छी नहीं है। हूशे ने आगे कहा, तू अपने पिता और उसके वीरों को जानता है कि वे पराक्रमी और उस रीचनी के समान खूंखार हैं जिसके बच्चे जंगल में छीन लिए गए हों, और तेरा पिता युद्ध कला में कुशल है, वह अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताएगा। सुन, इस समय तक वह किसी गुफा या किसी अन्य स्थान में छिप गया होगा, और ऐसा होगा कि जब वह पहले ही आक्रमण में उन पर टूट पड़ेगा तो जो सुनेगा वह यही कहेगा कि अबशालोम के अनुयायियों का कत्ले आम हो रहा है। तब वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है उसका साहस भी जाता रहेगा, सारा इसराइल तो जानता ही है कि तेरा पिता पराक्रमी और जितने पुरुष उसके साथ हैं वे सब शूरवीर हैं। मैं सलाह देता हूं कि दान से बेरशबा तक सब इसराइली निश्चय तेरे पास समुद्र तट की रेत के समान बहुत संख्या में एकत्रित किए जाएं और कि तू स्वयं युद्ध में जाए। इस प्रकार जिस किसी स्थान में वह मिले हम उसके पास पहुंच ही जाएंगे। तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। इससे वह और जितने लोग उसके साथ हैं उनमें से एक भी बचने ना पाएगा। यदि वह किसी नगर में घुस जाए तो सारा इसराइल रस्सियां लेकर वहां आएगा और हम उस नगर को खींच कर खाई में फेंक देंगे यहां तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी ना बचेगा। तब अबशालोम और इसराइल के सब लोगों ने कहा, एरे की हुशे की सलाह अहितोपेल की सलाह से उत्तम है, क्योंकि यहोवा ने तो अहितोपेल की अच्छी सलाह को निष्फल करने का निश्चय किया था जिससे यहोवा अबशालोम पर ही विपत्ति लाए। मित्रवर, हमने इस वृत्तांत में देखा कि हुशे ने एक सुंदर और बड़ी बुद्धिमानी की सलाह अबशालोम को दी। हुशे की सलाह थी मनोवैज्ञानिक थी। हुशे ने अबशालोम को दाऊद के युद्ध कौशल और अनुभव के विषय में भी स्मरण करा दिया। उसने बता दिया कि तेरा पिता कैसा पराक्रमी है और उसके शूरवीर योद्धा बच्चा छीनी हुई रीछनी के समान खूंखार हैं। और मेरा विश्वास है कि इसका प्रभाव अबशालोम के ऊपर अधिक और सही और उचित पड़ा होगा। जैसा कि 8वें और 10वें पदों में हमने पढ़ा, हुशे ने आगे कहा, तू अपने पिता और उसके वीरों को जानता है कि वे पराक्रमी और उस रीछनी के समान खूंखार हैं जिसके बच्चे जंगल में छीन लिए गए हों। और 10वें पद में वो बताता है, तब वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है उसका भी साहस जाता रहेगा। सारा इसराइल तो जानता है कि तेरा पिता पराक्रमी है और जितने पुरुष उसके साथ हैं वे सब शूरवीर हैं। और इसके पश्चात जो सलाह हुशे ने दी उसको सबने पसंद किया और हुशे की सलाह की प्रशंसा की। तब 15 से अग्रिम पदों में हम देखते हैं, तब हुशे ने सादोक और अब्यातार याजकों से कहा, अबशालोम और इसराइल के पुरनियों को अहितोपेल ने तो यह सलाह दी पर मैंने ऐसी ऐसी सलाह दी, अतः शीघ्र भेजकर दाऊद को बता, जंगल के घाटों में रात मत बिता पर अवश्य पार उतर जा। ऐसा ना हो कि राजा और जितने लोग उसके साथ हैं सब के सब नाश हो जाएं। और इस प्रकार से हुशे तुरंत राजा को संदेश भिजवा देता है कि वह अपने जीवन की रक्षा करे। अब हम देखेंगे कि यह संदेश किस प्रकार से दाऊद तक पहुंचाया जाता है। 17वें पद को देखें, योनातान और अहिमास तो एन रोगेल में ठहरे हुए थे। एक दासी वहां जाती और उनको समाचार दे आती थी, तब वे जाकर राजा को समाचार दे आते थे, क्योंकि वे किसी के देखते नगर में नहीं जा सकते थे। पर एक लड़के ने उन्हें देखकर अबशालोम को बता दिया, अतः उन दोनों ने शीघ्रता से प्रस्थान किया और बहुरीम में एक व्यक्ति के घर आए जिसके आंगन में एक कुआं था। वे उसी कुएं में छिप गए। तब उसकी स्त्री ने कपड़ा लेकर कुएं के मुंह पर बिछा दिया और उस पर अनाज फैला दिया जिससे कुछ मालूम ना पड़े। तब अबशालोम के कर्मचारियों ने घर में उस स्त्री के पास आकर पूछा, अहिमास और योनातान कहाँ हैं? तब स्त्री ने उनसे कहा, वे तो नाले के उस पार गए, उन्होंने उनको खोजा और ना पाकर यरूशलेम को लौट गए। सो इस प्रकार से योनातान और अहिमास की रक्षा हो सकी। अब 21वें पद से आगे हम अहितोपेल द्वारा आत्महत्या के विषय में पढ़ते हैं। आइए हमारे साथ देखिए, ये दोनों उनके प्रस्थान करने के बाद कुएं से बाहर निकल आए, अर्थात अहिमास और योनातान, और उन्होंने जाकर दाऊद राजा को सब कुछ बताया। उन्होंने दाऊद से कहा, उठ नाले को जल्दी पार कर, क्योंकि अहितोपेल ने तेरे विरुद्ध ऐसी ऐसी सलाह दी है। तब दाऊद अपने सब साथियों सहित उठकर यर्दन पार हो गया। पांव फटने तक ऐसा एक भी ना रहा जिसने यर्दन को पार ना कर लिया हो। जब अहितोपेल ने देखा कि मेरी सलाह तो मानी नहीं गई, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और उठकर तथा अपने नगर में अपने घर को जाकर अपने परिवार का प्रबंध किया, फिर अपने आप को फांसी लगा ली और इस प्रकार वह मर गया और उसको उसके पिता की कब्र में मिट्टी दी गई। मित्रवर, हम देखते हैं कि दाऊद का ये विरोधी आत्महत्या करके समाप्त हो गया और इस प्रकार दाऊद यरदन पार हो गया और उसका विरोधी सलाहकार फांसी लगाकर मर गया। 24वें पद में हम पढ़ते हैं, इसके बाद दाऊद महनेम में आ गया और अबशालोम तथा उसके साथ इसराइल के सब पुरुषों ने यरदन को पार किया। अबशालोम ने योआब के स्थान पर अमासा को सेना के ऊपर नियुक्त किया था। हम जानते हैं कि दाऊद का सेनापति योआब था, किंतु अबशालोम ने अब यरूशलेम की सेना पर अमासा को सेनापति नियुक्त कर लिया है। फिर आगे लिखा है, ये अमासा एक इसराइली पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यित्रा था, जिसने नहाशा की पुत्री अबीगल अर्थात योआब की माता सरुया की बहन को ब्याह लिया था। पहला इतिहास उसके दूसरे अध्याय के 17वें पद में हम इस विषय में पढ़ते हैं कि ये व्यक्ति इश्माइली था। तब इसराइलियों और अबशालोम की छावनी गिलाद में डाली गई। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि अबशालोम पूरी तरह से युद्ध की तैयारी में है। 27वें पद में हम पढ़ते हैं, जब दाऊद महनेम में आया तब अम्मोनियों के रब्बा से नहाश का पुत्र शोबी और यहाँ अन्य लोग हैं जो चारपाइयाँ, तसले, मिट्टी के बर्तन, गेहूं, आटा, अनाज, लोबिया और मधु, दही, भेड़े, गाय के दूध का पनीर इत्यादि भोजन वस्तुएं लेकर दाऊद के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तेरे साथी और तुम लोग थक गए हो और जंगल में भूखे थके मांदे हो, प्यासे हो, इसलिए हम ये सब कुछ लेकर आए हैं। प्रिय मित्र, अब दाऊद महनेम में है और अबशालोम अपने सैनिकों सहित गिलाद में डेरे डाले हुए हैं। दाऊद इस समय बड़ी कठिन परिस्थिति में है। दाऊद तो बिना किसी तैयारी के यरूशलेम से एकाएक भाग निकला था, किंतु उसके वफादार साथी उसके साथ हैं और यहाँ उसकी सहायता करते हैं। अबशालोम के विलंब के कारण दाऊद को तैयारी करने का अवसर भी प्राप्त हो गया है। अब दाऊद और उसके साथी अबशालोम का सामना करने को तैयार हैं। 18वें अध्याय में हम गृह युद्ध का दृश्य देखेंगे। ये गृह युद्ध पिता और पुत्र के मध्य होगा। प्रिय मित्र, पाप कैसा भयंकर परिणाम हमारे सामने लाता है, हमें इससे सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अब इन्हीं वचनों के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अपनी समस्त चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय श्रोता, आज हर व्यक्ति अपनी मानसिक उलझनों में इतना घिरा हुआ है कि वो उनसे मुक्त नहीं हो पा रहा है। आज हर व्यक्ति शांति चाहता है।